मिथ्या शिष्य नूं मिथ्या संस्कृत ग्रंथ दा उपदेश कर रहे हैं। तो वो संस्कृत ग्रंथ जिहड़ा सी उन्हूं की कीता है, टीका कीता हिंदी दे विच, हिंदी दे विच टीका करके तो वो उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्य नूं। किहड़े शिष्य? मिथ्या गुरु, मिथ्या शिष्य, मिथ्या ही संस्कृत का ग्रंथ है जिसते उपदेश हो रहा है। ऐसे क्यों भाई? मिथ्या शिष्य, मिथ्या गुरु, तो मिथ्या ही संस्कृत का ग्रंथ। आपने नामे भगवान के श्लोक सुने होंगे, उसमें एक श्लोक है ना, केड़ा? नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, बस यही चीज जी साहब लगा लेना अपना व्याख्या कि फिर दसांगे जे नाम बुद्धि च बैठू तो पहले ये लगा लियो, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक इस जगत में किन जपया, किन्ने जपया दसो ना, है कोई ऐसा? यदा मतलब किसी ने भी नहीं जपया, बड़े बड़े भगत हुए, तपस्वी हुए, जप करने वाले हुए, पर हुए कौन? शरीर नू लैके नहीं कह रहे हो, शरीर तो इत्थे रह गया। इस वास्ते गुरु भी मिथ्या, शिष्य भी मिथ्या, और जेड़ा उपदेश हो रहा वह भी मिथ्या ग्रंथ। नाम रहो, नाम भी गया, रह गया। कोई जाओ तुम इतों हरिद्वार जाना हो तो ताकि कोई वस्तु पिंड छुट जाए तो की कहोगे? रह गई, वो तो उत्थे रह गई, वो तो उत्थे रह गई। नाम रहो रह गया, साधु रहो वो भी गया। चलो मान लो, चलो ऐसे लाओ, फिर आखिरी पंक्ति का अर्थ नहीं लगता ना, जो इतों हरिद्वार जाना हो तो ताकि कोई वस्तु पिंड छुट जाए तो की कहोगे? रह गई, वो तो उत्थे रह गई, वो तो उत्थे रह गई। नाम रहो रह गया, साधु रहो वो भी गया। चलो मान लो, चलो ऐसे लाओ, फिर आखिरी पंक्ति का अर्थ नहीं लगता ना, जो ऐसे लावांगे, नाम रहो, एक नाम रहिंदा है, एक साधु रहिंदा है, एक गुरु रहिंदा है, एक गोबिंद रहिंदा है, किन जपियो गुरमंत, इहदा अर्थ की लगाओगे फिर? इहदा अर्थ फिर की लगेगा? इहदा अर्थ लगा ही ना फिर, अर्थ का की है? अपनी बुद्धि ना लगाओ, वो गल नहीं, उत्तर भाई उत्तर दे अर्थ भी लगना चाहिए ना पंक्तियां का भी। हाँ चलो, अब ये संस्कृत का मिथ्या ग्रंथ जो है उपदेश हो रहा है, तो उसके विच उसने अग्रिद्ध देव ने तीन प्रश्न किए सी, ठीक है? पहला की सी, मैं कौन हूँ? फिर दूसरा, संसार का कर्ता कौन है? ठीक है। तीसरा, मुक्ति का हेतु कौन है? ज्ञान है अथवा उपासना है अथवा कर्म है अथवा दोवें है? ये तीन प्रश्न किए सी ना, इतना प्रश्न उसने खोल के दसिया सी। मैं दा अर्थ उसने जेड़ा क्या है भी मैं कौन हूँ, तो इहदा अर्थ यह है, मैं दा अर्थ भी मैं शरीर हूँ अथवा शरीर से अलग हूँ, जे अलग भी हूँ तो मैं कर्ता भोगता हूँ, तो मेरे को तो ऐसे प्रतीत तो हो रहा, मैं मनुष्य हूँ और मेरा जन्म होया है, तो ये जी प्रतीति है मेरे को हो रही है, ये सत्य है ना मिथ्या है? ऐसे उसने प्रश्न किया सी, तो उन्हें अद्धा दोहा पढ़िया सी, सत चित आनंद एक तू ब्रह्म अजन्मा असंग। ये एक एक शब्द नू लैके चलेंगे, सत पहला लेंगे, फिर चित, फिर आनंद, एक एक शब्द की व्याख्या करके अर्थ करके फिर आगे चलेंगे। अब थोड़ा जहाँ इनका शास्त्रार्थ हो रहा आपस में, वो सुन लो थोड़ा, ठीक है ना? आत्मा सुख दुख धर्म, सुख दुख आदि धर्म से रहित व्यापक एक है, सांख्य मत का और त्रिविध न्याय मत का कथन और खंडन। थोड़ा थोड़ा दस रहे हैं ना, न्याय मत भी दसणगे, सांख्य मत भी दसणगे, और उदा पहला दस करके फिर खंडन करेंगे। दसिया क्यों, खंडन क्यों किया? उपोध घात की रीति से कि वो ऐसे मानते हैं पर ऐसे ठीक नहीं, ठीक है ना? अब सुनो, आत्मा एक है नाना नहीं, जो आत्मा करता भोगता होवे तब तो नाना होवे, काहे ते कोई सुखी है कोई दुखी है, और करता भोगता एक ही अंगीकार होवे तो एक के सुख होने ते तथा दुख होने ते सर्व को सुख तथा दुख हुआ चाहिए। जानते भोगता नाना है और आत्मा भोगता है नहीं, जानते एक है, ये है संख मत का सिद्धांत। अब पूर्व पक्षी संख मत का और सिद्धांत बोल रहा है। संख मत के, संख के मत में आत्मा कर्ता भोगता अंगीकार नहीं, क्यों? वो की कहते, वो कहते पुरुष जो है असंग है, पुरुष माने आत्मा, आत्मा जो पुरुष है वो कैसा है? असंग, उदा किसी प्रकार किसी नाल भी कभी भी संग नहीं है, ठीक है, वो कर्ता भोगता भी नहीं है। संख मत में आत्मा कर्ता भोगता अंगीकार नहीं करके नाना पुरुष जो अंगीकार किए हैं सो अत्यंत विरुद्ध है। नहीं मिले, मिल गया? देखो, सत्व रजन तमोगुण की सम अवस्था का नाम प्रधान है। सतोगुण, जितना सतोगुण है उतनी मात्रा में तमोगुण और उतनी मात्रा में रजोगुण, जितना सतोगुण है उतनी मात्रा में रजोगुण, उतनी मात्रा में तमोगुण, तब परले होगी, ऐसे परले नहीं होगी। ये गुण आपस विच वध घट होंगे तो कभी परले नहीं होगी, सृष्टि बढ़ेगी, सृष्टि की उत्पत्ति होगी। जब ये तीनों गुण बिल्कुल सम अवस्था च आ जाएंगे तो फिर परले हो जाएगी, उस समय जिहड़ी अवस्था है उसका नाम है प्रधान। उस समय की कहेंगे उस अवस्था नू प्रधान, ठीक है। संख मत में सिद्धांत रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सम अवस्था का नाम प्रधान कहे हैं। सो प्रधान प्रकृति है, विकृति नहीं, विकृति मैंने कार्य, प्रकृति मैंने कारण, ठीक है। विकृति नाम कार्य का है और प्रकृति नाम उपादान कारण का है। सो प्रधान महतत्व का उपादान कारण है, जानते प्रकृति है और अनादि है, जानते विकृति नहीं। और महातत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा जे सात प्रकृति विकृति हैं, उत्तर उत्तर के प्रकृति हैं और पूर्व पूर्व के विकृति हैं, तन्मात्रा भी भूतन के प्रकृति हैं। इस रीति से सात प्रकृति विकृति है और पंचभूत और दस इंद्रियां और मन जे सोलह विकृति है, प्रकृति नहीं। और पुरुष प्रकृति विकृति नहीं, काहे ते जो हेतु किसी पदार्थ का होवे तो प्रकृति होवे है, कार्य होवे तो विकृति होवे है। सो पुरुष किसी का हेतु नहीं जानते प्रकृति नहीं, और कार्य नहीं जानते विकृति भी नहीं, जानते पुरुष असंग है। इस रीति से संख मत में 25 तत्व हैं, तत्व नाम पदार्थ का है। संख मत में ईश्वर का अंगीकार नहीं, देख लो संख मत में ईश्वर को नहीं मानते, ते नास्तिक किनू कहेंगे? ना ना, नास्तिक वो नहीं जड़े ईश्वर नहीं मानते, नास्तिक वो जड़े वेद नहीं मानते, वो नास्तिक है जो वेद नहीं मानते, उन्होंने नास्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर नहीं मानते वो नास्तिक नहीं है, वो नहीं मानते तो किनू मानते? ब्रह्म नू, व्यापक नू, लहर नू क्यों मनो? जड़ी समुद्र रूप है, जड़ा समुद्र रूप सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, उन्हें तो मानते हो, तो लहर जड़ा उपाधि वाला उन्हें मनने भी नाम ने तामी की है, ठीक है ना। स्वतंत्र प्रकृति जगत का कारण है और पुरुष के भोग मोक्ष के निमित्त प्रकृति ही प्रवृत्त हो गया, पुरुष नहीं। प्रकृति के विषय रूप परिणाम ते पुरुष को भोग होवे है और बुद्धि द्वारा वेक रूप प्रकृति के परिणाम ते मोक्ष होवे है। यद्यपि पुरुष असंग है ताके विषय भोग मोक्ष बने नहीं, तथापि ज्ञान सुख दुख राग द्वेष से आदि लेके बुद्धि के परिणाम है। देख लो, आज देख लो केदे काम है, केड़े केड़े। यद्यपि पुरुष असंग है, पुरुष मैंने आत्मा, यद्यपि पुरुष असंग है, कह रहे हैं आत्मा जो है वो कैसा है? असंग, उदा किसी दे नाल संग नहीं, ताके विषय भोग और मोक्ष बने नहीं, उन्हों बंद मोक्ष तो है नहीं आत्मा नू, क्यों? वो तो असंग है, ठीक है। तथापि फिर भी ज्ञान सुख दुख राग द्वेष से आदि लेके बुद्धि के परिणाम है, ता बुद्धि का आत्मा से अविवेक है। अविवेक मैंने अज्ञान, बुद्धि का आत्मा दे नाल अविवेक है, विवेक नहीं, जानते आत्मा से आरोपित बंध मोक्ष है, परमार्थ से नहीं, आत्मा में आरोपित है। दो शास्त्रों का ज्ञान हो गया आपको, केड़े केड़े वेदांत शास्त्र वो की मनते, वो भी आरोपित ही मनते हैं। सांख्य शास्त्र वाले की मन रहे हैं, वो कह रहे बंधन जेड़ा तानू प्रतीत हो रहा, केड़ा जन्म मरण रूपी बंधन, ये क्या है? भ्रांति रूप है, ठीक है ना। सांख्य मत वाले भी कह रहे हैं और वेदांती भी कह रहे हैं, ठीक है। परमार्थ से नहीं, वास्तविक में नहीं है, खाली प्रतीत हो रहा है बंध मोक्ष। अविवेक सिद्ध जो आत्मा में भोग तांसे ही आत्मा को संख मत में भोगता कहे हैं। और देखो वो अंदा अविवेक से, ज्ञान से नहीं, अज्ञान ते जड़ा उदे विच करता भोगता पना दिखाई दे रहा है आत्मा ने, आत्मा दे विच उनू लैके वो कह रहे हैं आत्मा जड़ा है करता भोगता है कैसा, करता भोगता नहीं है, ठीक है। परमार्थ से आत्मा भोगता नहीं, बुद्धि ही भोगता है, देख लो और स्पष्ट कर देता। परमार्थ से आत्मा क्या है? भोगता नहीं, भोगता कौन है? बुद्धि। ते संसार नू चलाने वाली वस्तु केड़ी है? कैसे बुद्धि है? बुद्धि जड़े काम नू निर्णय करेगी वो कम होगा, जिसनू बुद्धि निर्णय नहीं देगी वो कम नहीं होगा। तो फिर बुद्धि ने कह दिता कोई गल नहीं, ये कम अपना करना ही है, दो घंटे बैठना ही है, बैठे जाओगे। मन संकल्प विकल्प करेगा, मन तो दौड़ेगा नहीं, बस बहुत बहुत हो गया, चल अद्धा घंटा रह गया, डेढ़ हो गया, अद्धा घंटा फिर ला लांगे किधर। मन संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि जब तक निर्णय देगी तब तक आसन नहीं टूटेगा। जब बुद्धि ने कह दिया हाँ ठीक है, छड़ के बैठ जाओगे, ना बुद्धि तो बाहर नहीं हो सकता। छाला तो उन मारनी है उन्हें, अगर बुद्धि जब तक उनको आर्डर नहीं देगी तब तक कुछ नहीं करने वाला हो। इस वास्ते की कहते इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रिय बेपरमना मनसस्तु पराबुद्र जो बुद्धि परतस्तु सहा। ये स्थूल शरीर दे नालों श्रेष्ठ है इंद्रिया, इंद्रिया दे नालों श्रेष्ठ है मन, मन दे नालों श्रेष्ठ है बुद्धि, ते बुद्धि दे नालों बहुत अत्यंत गुणा श्रेष्ठ है आत्मा। इस वास्ते जेड़ा है शरीर नू छड़ के इंद्रिया नू मन में लै करो, मन नू बुद्धि में लै करो, ते बुद्धि नू आत्मा में लै कर दो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते चलोगे तो काम बनता जाएगा हौली हौली। बुद्धि आत्मा से भिन्न है, देखो कह रहा है बुद्धि आत्मा से भिन्न है। बुद्धि नू अपना आप स्वरूप क्यों समझी बैठे? बुद्धि आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा से भिन्न है। इस ज्ञान का नाम विवेक है, इनू कहते विवेक, आंदे विवेकी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, विवेकी कहते किनू ये भी नहीं पता जी, विवेकी किनू कहते हैं? बुद्धि आत्मा से भिन्न है, इस ज्ञान का नाम विवेक है, ठीक है। ताके अभाव का नाम अविवेक, जिन्हू ये ज्ञान नहीं है उन्हू की कहां के अविवेकी, ठीक है। इस रीति से सांख्य मत में आत्मा असंग है और सुख दुख सुख आदिक बुद्धि के परिणाम है, जहां बुद्धि के धर्म है। सुख दुख के धर्म हो गए फिर, तो फिर आप की कहने मैं बड़ा दुखी हूं भाई, मैं बहुत दुखी हूं, तो दुख दुख का दुख केदे विच है फिर? दुख तो बुद्धि विच होए ना, आत्मा विच दुख तो नहीं है ना, तो फिर अपने विच क्यों मनी फिरन डे? आत्मा नाना है, फिर इत्थों आके थोड़ा गड़बड़ कर देंगे, आत्मा नाना है भी अलग अलग है, इत्थे आके थोड़ा गड़बड़ कर देंगे संख वाले। वो कह रहे जितने शरीर है उतनी आत्मा है, नाना मैंने अलग अलग, इसे आगे थोड़ा गड़बड़ करेंगे सिद्धांती, अब इसको काटेंगे। सिद्धांती सो वार्ता अत्यंत विरुद्ध है, जो सुख दुख आत्मा के धर्म हो गए तो सुख दुख के प्रति शरीर भेद होने ते आत्मा का भेद होवे। सो सुख दुख आत्मा के धर्म तो है नहीं किंतु बुद्धि के धर्म है। वो कह रहे तुसी आत्मा नू नाना मन रहे जे, ते सुख दुख बुद्धि के मन रहे जे, ते जे आत्मा दे सुख दुख मनो तो फिर तो आत्मा अलग अलग दिखाई दे, तो जदों ये सुखी है ये दुखी है, ये सुखी है ये दुखी है, ऐसे हो रहा है, तो तो क्या हो रहा है, ओदी बुद्धि में सुख है, ओदी बुद्धि में दुख है, तो दुखी हो रहे, आत्मा तो एक ही है, आत्मा सुखी दुखी हो नहीं रहा। ऐसे मनो तो फिर तो ठीक है। जानते सुख दुख के भेद ते बुद्धि का ही भेद सिद्ध होवे है, सुख दुख के भेद से बुद्धि का भेद सिद्ध होगा, आत्मा का नहीं, आत्मा का भेद सिद्ध होवे नहीं। जैसे एक ही व्यापक आकाश में नाना उपाधि के धर्म उपाधि और आकाश के अविवेक से प्रतीत होवे हैं, 50 घड़े भर के रखे होने थे, 50 कछोरे होण, तो कैसे कैसे लगेगा, आकाश भी उतने ही लगेंगे। आकाश का भेद उदे विच है घड़ा, घटा आकाश और महाकाश का की भेद है, खाली उपाधि का, घड़ा तोड़ दो तो महाकाश और घटाकाश पहले भी एक सी तब भी एक हो जाएंगे। तो फिर घड़ा घटाकाश का और महाकाश का जो भेद प्रतीत हो रहा, कैसे हो रहा, अविवेक से, अविवेक से, उपाधि से, और जब उपाधि हटा दीती, जब विवेक हो गया, उपाधि बनी भी रहे, विवेक हो गया तो फिर घटाकाश और महाकाश में अंतर नहीं प्रतीत होगा। तैसे एक ही व्यापक आत्मा में नाना बुद्धि के धर्म अविवेक से प्रतीत होवे हैं, जह वार्ता संख्य मत में अंगीकार करनी उचित है। आत्मा को असंग मान के नाना अंगीकार करना निष्फल है, और कोई आत्मा मुक्त है और उनको बंद है, इस रीति से बंद मोक्ष के भेद से वे जो आत्मा का भेद अंगीकार करो सो भी बने नहीं। कहे थे जो बंद मोक्ष आत्मा में अंगीकार करें तो बंद मोक्ष भेद से आत्मा का भेद सिद्ध होवे। वो कह रहे जब बंद तेरा इलाज करना पड़ेगा, बंद मोक्ष जे तुसी आत्मा दे धर्म मानते, जे तुसी बंद मोक्ष आत्मा दे धर्म मनो, पहला तुसी कह रहे आत्मा असंग है, अब तुसी बंद मोक्ष आत्मा दे धर्म मनोगे तो जेड़ा तुसी पहले असंग कह रहे वो किधर गया फिर, तुहाडा जेड़ा निजम बनाया सी, ठीक है ना। कुछ कठिन है थोड़ा सा, आगे फिर आएगा सर, घबराना नहीं, ठीक है। सो बंद मोक्ष संख मत में असंग आत्मा में अंगीकार किए नहीं, किंतु बुद्धि के अविवेक से बंद अंगीकार किया है, और बुद्धि के विवेक से बंद का मोक्ष अंगीकार किया है। जो वस्तु अविवेक से होवे सो विवेक से दूर होवे, सो वस्तु रज्जु सर्प की न्याय मिथ्या होवे है, आत्मा विषय भी बुद्धि के अविवेक से बंद है और विवेक से दूर होवे है। जानते बंद मिथ्या है, जैसे बंद मिथ्या है तैसे आत्मा का मोक्ष भी मिथ्या है। जामे बंद सत होवे ताका ही मोक्ष सत होवे है, और आत्मा में बंद मिथ्या है जाते मोक्ष भी मिथ्या। इस वास्ते कहते बंद मोक्ष से रहित है आत्मा, क्यों बंद मोक्ष से रहित है, भी पहले आत्मा को बंधन होवे ते बाद में मुक्त हो गया होवे तो फिर तो मान लो भी आत्मा दे बंद मोक्ष हो गया, जो में बंद मोक्ष है ही नहीं तो फिर तो मिथ्या ही हो गया ना। फिर इस रीति से मिथ्या जो बंद मोक्ष सो आकाश की न्यायी एक आत्मा में भी बने हैं, तिनके भेद से आत्मा का भेद भेद सिद्ध होवे नहीं। जानते संख मत में आत्मा का भेद असंगत है। और पूर्व पक्षी बोल रहा थोड़ा सा शास्त्रार्थ चल रहा उनका, ठीक है। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जैसे न्याय मत में भी आत्मा का भेद असंगत है, तैसे न्याय मत में भी, न्याय मत वाले भी थोड़ा सुन लो, किड़ा सुन लिया पहला संख मत, अब न्याय मत वाले की मन रहे हैं। तैसे न्याय मत में भी आत्मा का भेद असंगत है, काहे ते जह न्याय का सिद्धांत है। अन्याय का सिद्धांत सुनो, देखो सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ज्ञान के संस्कार सांख्य परिणाम पृथकत्व संयोग और विभाग जे चतुर्दस गुण जीव रूप आत्मा विषय है, ये 14 गुण आत्मा दे विच रहणगे, संख मत दा ये सिद्धांत है, ठीक है। सांख्य परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग ज्ञान इच्छा और प्रयत्न जे अष्ट ईश्वर में है, जे इतने गुण ईश्वर में है उना, देखो कोई शास्त्र नू सतमत मान लेना, ये सब शास्त्र जितने बने कल्पना करके बने हैं, कल्पना क्यों की थी, समझाने वास्ते। जैसे उपोदघात किया, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा तो किथे दिखाई देता, वो पेड़ देख जाओ जड़ी पीली बिल्डिंग वो देख, तो पीली बिल्डिंग जा पेड़ दे उत्ते चंद्रमा तो नहीं है ना, उपोधघात किया। मोटी बुद्धि वाले ने मोटा पदार्थ दिखा दिता। ऐसे ये जैसे जैसे किसी की बुद्धि होगी ऐसे ऐसे वो उसको तत् गिणा के पार करना, जाना तो पार है। जेड़ा तुहानू शास्त्र चंगा लगता होवे, जेड़ी बेड़ी चंगी लगती होवे, उहदे विच बैठ के पार चले जाओ। न्याय वाले की बेड़ी ठीक लगती है तभी, जे संख मत वाले की ठीक लगती है तो भी, अगर वेदांतियों की ठीक लगती है तो फिर भी। बेड़ियाँ नहीं दिखनियाँ, पार जाना है। तो बेड़ियाँ का थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए ना, भी साढ़े पार निकलने वास्ते इतनिया बेड़ियाँ बनाईया है। वो तो बैठ जाओ और क्या, जी बहुत आसा शॉर्टकट रास्ता हो उधर जाओ ना, इतना ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों घूम घूम के जाना। सीधी बस पकड़ो, सीधी बद्रीनाथ। ईश्वर के ज्ञान इच्छा और प्रयत्न नित्य हैं, और जीव के तीन अनित्य हैं। ईश्वर व्यापक है और नित्य है, जीव नाना है और संपूर्ण व्यापक है। देखो जहां गड़बड़ कर रहे हैं, की कह रहे हैं, जीव नाना है और व्यापक है, और जो अलग अलग होंगे व्यापक कैसे हो गए भाई। जड़ी चीज अलग अलग पहले कह रहे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फिर कह रहे हो व्यापक है, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप ही तो नाना कह रहे, जीव नाना है और संपूर्ण व्यापक है, नित्य है, और जीव का ज्ञान अनित्य है। जाते जब ज्ञान गुण होवे तब तो जीव चेतन है, और ज्ञान गुण का नाश होवे तब जड़ रूप है। वो कह रहे हैं न्याय मत वाले का एक सिद्धांत ये है, आत्मा का और मन का जदों ऐसे संयोग होगा तब ज्ञान होगा, अगर आत्मा का और मन का संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। कह रहे कैसे, कह रहे जो सुषुप्ति दे विच मन लीन हो जाता है तो आत्मा का और मन का संयोग टुट गया तो ज्ञान नहीं, उस समय जड़ आत्मा रहिंदा है। इसलिए कोई उस सुषुप्ति दे विच कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान, क्योंकि मन का और आत्मा का संयोग नष्ट हो गया, इसलिए ज्ञान नहीं है। जदों मन का और आत्मा का संयोग होगा तो तब ज्ञान हो जाएगा, ये न्याय मत वाले मनते हैं। ईश्वर की, ईश्वर जीव की न्यायी आकाश काल दिग और मन जे नित्य हैं। इतने पदार्थ नित्य मानते हैं, जीव नूं भी नित्य मानते हैं, ईश्वर नूं भी, आकाश और काल दिग माने दिशा और मन, मन नूं भी नहीं मानते भी लै हो जाएगा, मतलब मन नहीं लै हो सकता, ये भी नित्य मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं। देखो जो पृथ्वी जल तेज और वायु इन्ह के परमाणु नित मनते, परमाणु मैने छोटे छोटे कण, वो कैसे कण है, देखो जो चरोखे झरोखे से सूक्ष्म रज प्रतीत होवे है ताके छठे भाग का नाम परमाणु है। देख लो, मान लो इधर से लाइट पै रही है सूरज दी, और सूरज दी लाइट पै रही है वो जोड़ा आ रहा ना एक लाइट सी, उहदे विच कदी कभी ऐसे लगता थोड़े थोड़े कण उड़ते दिखाई देंगे, ऐसे इधर नहीं देंगे, वह धुप के थोड़ा थोड़ा देंगे। उहदे छेवें भाग का नाम परमाणु है। वो छेवां भाग उसको कैसे करना, ऐसे नहीं कर देना, ऐसे उहदी मोटाई दे छे भाग करने हैं, लंबाई दे नहीं। उहदी लंबाई दे मोटाई दे छे भाग करोगे तो की बचेगा, पहली गल तो दिखाई नहीं देगा नंगी अख ना। तो जो छेवां भाग कर दोगे तो छेवें भाग का नाम परमाणु है, ये हिसाब ला लो। तो उन्हों की कहें फिर, उन्हों त्रिश्रेणु, उहदा नाम है त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु जिहड़े सूरज के लाइट के कमरे के रज छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देंगे उन्हों कहें त्रिश्रेणु। ऐसे ही त्रिश्रेणु पृथ्वी के भी है, जल के भी है, आकाश के भी है, वायु के भी है। वो परले कैसे मनते हैं, वो कहें परले जो होगी उदों ऐसे हो जाएगा, ईश्वर इच्छा करेगा परमाणु अलग अलग हो जाएंगे, सब परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। पृथ्वी के परमाणु अलग अलग हो गए तो जिहड़ी ऐसे बाणी बैठी है ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। हुण सारे इकट्ठे है परमाणु, ऐसे जल दे भी जो परमाणु अलग अलग हो जाएंगे परले हो जाएगी जल दी, ऐसे तेज दे भी, ऐसे वायु दे भी, आकाश नूं नित मनदे। सो परमाणु आत्मा के, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं, जो झरोखे से सूक्ष्म रज प्रतीत होवे हैं, ताके छठे भाग का नाम परमाणु है। सो परमाणु आत्मा की न्याय नित्य है। और भी जाति से आदि लेके कितने पदार्थ न्याय मत में नित्यम है, नित्य मंदे। वेद विरुद्ध सिद्धांत का बहुत लिखने का जिज्ञासु को उपयोग नहीं। देख लो की कह रहे हैं, ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੀਤੀ ਮਾਤਰ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕੋ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੂੰ, ਐਸੀ ਜੋ ਦੇਹ ਮੇਂ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਤਰੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੂੰ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼। ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੂੰ, ਐਸੀ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿਸ਼ੇ, ਦੇਹ ਮਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਦੇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਕੇ ਨਿਮਿੱਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਸੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਨਿਆਇ ਮਤ ਮੇਂ ਆਤਮਾ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਹੇਤੂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਹੇਤੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਨੇ ਭੁਲੇਖਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਜੇ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੂੰ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੂੰ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਆ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਕੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਗਾ, ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ। ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੋਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਹ ਆਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਂ ਆਤਮਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਹ ਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਹ ਆਦਿ ਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਹ, ਸੂਲ ਸੂਕਸ਼ਮ ਕਾਰਨ, ਪੰਚਕੋਸ਼, ਸਭ ਇਹ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਹ ਆਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਸੇ ਆਤਮਾ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੈ ਨਾਮ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਆਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਸੇ ਆਤਮਾ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਾ ਨਾਮ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਜੈ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਅਭਾਵ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਕੇ ਨਿਮਿੱਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਜੈ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਅਭਾਵ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਕੇ ਨਿਮਿੱਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੇ ਅਭਾਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧ ਰੂਪ ਜਨਮ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਾ ਭੋਗ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਏ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੂੰ। ਇਸ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਆਗੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਗਿਆਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧ ਕੇ ਅਭਾਵ 'ਤੇ 21 ਦੁੱਖੋਂ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਨਿਆਇਮਾਤਮੇ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਏਕ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਰੋਤਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਰੋਤਰ, ਤਵਕ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਔਰ ਮਨ, ਜੇ ਛੱਠ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ ਛੱਠ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਔਰ ਛੱਠ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਜੇ 21 ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਦੁੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਆਇਮਤ ਵਾਲੇ? ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਛੇਠਾ ਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਔਰ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਨਗੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ? ਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ? ਰੂਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੰਧ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜੇ? ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹ ਪੰਜ, ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਤਕ ਮਨ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਕਿਆ ਹੋਆ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ